लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। मैं आज तुमको शिक्षा प्रदान करूंगा जिससे तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो। मैंने तुम्हारे लिए परामर्श और ज्ञान संबंधी सूक्तियों को लिपिबद्ध किया है जिससे तुमको सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो और तुम उस व्यक्ति को विश्वसनीय उत्तर दे सको जो तुमको भेजता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 19 से लेकर 21 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। श्रोताओ, धर्मग्रंथ में जो बातें लिखी हैं, जो नियम दिए गए हैं, वे उन आज्ञाओं के समान हैं जो कोई गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को देता है और जो जीवन यापन के लिए उपयोगी और लाभदायक होती हैं। ये बातें हमें ईश प्रदत्त नियमों का ज्ञान कराती हैं और प्रभु ईश्वर पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर हमारे मन में प्रभु पर श्रद्धा को जगाती हैं। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ के लेखक का आग्रह है कि हम सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करें। लिखा है, जिससे तुमको सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो और तुम उस व्यक्ति को विश्वसनीय उत्तर दे सको जो तुमको भेजता है। सत्य के विश्वसनीय ज्ञान से तात्पर्य है सत्य की निश्चितता को जानना, ताकि हमारा विश्वास विवेकी, बुद्धिमान और तर्कसंगत हो। सत्य की विश्वसनीयता का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक अनुपालन, क्योंकि जो कोई भी ईश नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करता है वह निश्चित रूप से ईश्वर के सिद्धांत को जान लेगा। संत योहन रचित सुसमाचार में येसु कहते हैं, यदि कोई उसकी यानी कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है। श्रोताओ, भलाई करने के लिए हमें प्रज्ञा का वरदान मिला है ताकि दूसरे हमारे दीपक से रोशनी प्राप्त कर सकें और हम ईश्वर की इच्छा अनुसार अपनी पीढ़ी की सेवा कर सकें, क्योंकि जो लोग प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का विवेक रखते हैं वे उस आशा का कारण बताने में सर्वोत्तम रूप से सक्षम होंगे जिसका संचार ईश्वर में विश्वास करने से आता है। फिर 22वें अध्याय के 22वें और 23वें पदों में लेखक कहता है, दरिद्र का शोषण मत करो क्योंकि वह दरिद्र है और न्यायालय में दीनहीन को मत कुचलो क्योंकि प्रभु उनके पक्ष का समर्थन करेगा और उन्हें लूटने वालों का जीवन छीन लेगा। इन पदों में भी गरीबों पर अत्याचार करने की बर्बर और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ एक स्पष्ट और सामान्य लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। श्रोताओ, किसी भी आदमी को लूटना बुरा है लेकिन गरीबों को लूटना शर्मनाक बात है। पीड़ितों पर अत्याचार करना और इस तरह उन्हें और अधिक कष्ट देना, उनके विरुद्ध निर्णय देकर उन लोगों को संरक्षण देना जो उन्हें लूटते हैं, उतना ही बुरा है जैसा कि हमने स्वयं उन्हें लूटा हो। फिर लेखक इस बात पर भी बल देता है कि ईश्वर उत्पीड़ित लोगों के शक्तिशाली संरक्षक होंगे, ईश्वर उनके मामलों की पैरवी करेंगे। इस प्रकार जुल्म करने वालों को खुद जुल्मों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर दरिद्रों के पक्षधर हैं। प्रभु ईश्वर न्यायी प्रभु हैं। वे ही संपूर्ण सृष्टि और समस्त मानव जाति के एकमात्र न्यायकर्ता हैं।
है परमेश्वर की ये धरती, है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी। है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी।
आगे सूक्ति ग्रंथ का लेखक ज्ञानियों की सूक्तियों के माध्यम से जीवन उपयोगी चेतावनियां देता है। 22वें अध्याय के 24 से लेकर 27 तक के पदों में जो चेतावनियां निहित हैं, वे इस प्रकार हैं। क्रोधी का मित्र मत बनो, उग्र व्यक्ति की संगति मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके समान बनो और अपने लिए जाल बिछा दो। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेते हैं, कहीं ऐसा न हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास न हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। श्रोताओं, यह स्पष्ट है कि यदि हम क्रोधी या उग्र व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो उसी के समान बनने की आशंका बनी रहेगी। ऐसा करने से सूक्ति ग्रंथ का लेखक सावधान करता है, क्योंकि यदि क्रोधी के समान हम भी हर बात पर नाराज होने लगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। फिर दूसरों की जमानत देना और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेना भी खतरे से खाली नहीं होता, इसमें हमारा ही अहित होगा। श्रोताओं, मित्रों की मदद करना सच्ची मैत्री का सिद्धांत है। जहां तक हो सके हम ऐसा करें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि हम किसी खतरे में न पड़ें। यह मित्रता का नियम है कि हम स्वयं को अपने मित्रों के साथ समायोजित करें और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहें, और इसलिए हमें मित्र के चुनाव में भी बुद्धिमानी और सावधानी बरतनी चाहिए। माना कि हमें सभी के प्रति सभ्य होना चाहिए, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसे अपने हृदय में जगह देते हैं और किसके साथ मित्रता का अनुबंध करते हैं। इसलिए न तो दूसरों की जमानत देना चाहिए और न ही कर्जदारों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास ही चुकाने का रुपया न हो और हमसे वह सब छीन लिया जाए जो हमारे लिए जरूरी है। श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, कहीं ऐसा न हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास न हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। यहाँ तुमसे तुम्हारा बिस्तर भी छीन लिया जाए से मतलब स्पष्ट है कि यदि तुमने जमानत लेने के बाद या फिर कर्ज चुकाने का वादा करने के बाद कर्ज नहीं चुकाया तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसका अंतिम हिस्सा तक तुमसे छीन लिया जाएगा। यह स्मरण रखा जाए कि बाइबल धर्म ग्रंथ में हमें ऐसे कई वृत्तांत मिलते हैं जहां कर्ज चुकाने में विफलता के संबंध में कानूनों और रीति रिवाजों के तहत संपत्ति आसानी से जब्त की जा सकती थी, और यहां तक कि लोगों को कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूरी पर भी लगा दिया जाता था। अस्तु, न तो कर्ज लें और न ही किसी दूसरे के कर्ज की जिम्मेदारी लें। बाइबल आचार्य रॉस कहते हैं कि बिस्तर छीन लिए जाने वाक्यांश का प्रयोग कर सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने इस जोखिम की चेतावनी दी है कि अगर किसी के पास भुगतान करने के साधन नहीं हैं, तो उसके लेनदार उसका बिस्तर तक ले सकते हैं, यानी उससे सब कुछ छीन सकते हैं। फिर सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के अंतिम दो पदों में लेखक हमें अपनी संपत्ति और परिवारों को बर्बाद नहीं करने के प्रति सचेत करता है। कहता है, खेत का वह सीमा पत्थर मत हटाओ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खड़ा किया है। क्या तुम किसी को अपने काम में निपुण देखते हो? तो समझ लो कि वह साधारण लोगों की नहीं बल्कि राजाओं की सेवा करेगा। यहाँ इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने और अपने परिवार के लोगों, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वह सब उनका नहीं है बल्कि उसमें परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है। अस्तु जो व्यक्ति अपने उतावलेपन के कारण या मूर्खता के कारण या फिर कुप्रबंध से या दूसरों के ऋण के बोझ से दबकर अपनी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं, वे खुद को और अपने साथ अपने परिजनों को भी गरीबी में घसीट लेते हैं। जबकि अच्छा प्रबंधन और सूझबूझ के साथ अपनी संपत्ति का रख रखाव प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। याद रखें, जो कुछ हमारे पास है वह सब प्रभु ईश्वर की देन है। उसे संभालना और विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है।
है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी। है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पुनरुत्थान की खुशी हमारी है क्योंकि यह हमें हमारे बपतिस्मा के दिन दिया गया था। क्या हम इस पास्का काल की खुशी को स्वीकार कर सकते हैं? आइए हम पौत्री युकरिस्त में उनकी क्षमा में, प्रार्थना में और परोपकार के कार्यों में पुनर्जीवित मसीह की तलाश करने में तेजी लाएं। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने 11 अप्रैल को एक्स के माध्यम से कही और विश्वासियों को पास्का काल में प्रभु के पुनरुत्थान के आनंद को बनाए रखने का प्रोत्साहन दिया। गजा से हमास के हमले का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने गजा पट्टी में अपना सैन्य अभियान शुरू करने के 6 महीनों में फिलिस्तीनी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को एक गंभीर झटका दिया है। 30,000 से अधिक मौतों के अलावा सभी उम्र के फिलिस्तीनियों को भुखमरी का खतरा है और क्षेत्र में अकाल मंडरा रहा है। लंबे समय से चली आ रही इसराइली नौसैनिक नाकाबंदी के कारण अधिकांश सहायता गजा तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलिस्तीनी नागरिकों तक भोजन पहुंचाने के मानवीय प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया गया है। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में 2 फरवरी की त्रासदी है, जब एक खाद्य वितरण स्थल पर 100 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। कुछ इसराइली रक्षा बल की गोलियों से, कुछ गोलीबारी से बचने के लिए भगदड़ में कुचलकर मारे गए और पिछले हफ्ते वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 राहतकर्मी भी इसराइली हमले में मारे गए। दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में इसराइली सरकार की निंदा हुई। युद्ध के लंबा खींचने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की और भी कड़ी आलोचना की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना की याद करते हुए, जब सोवियत नियंत्रण पूर्वी यूरोप में लोगों को भूख से मरने से बचाने के लिए विमानों से पैराशूट द्वारा भोजन गिराया गया था, पड़ोसी जॉर्डन सहित अन्य देशों में सेना भी वही रणनीति अपना रही है। लेकिन भोजन से भरे एक मालवाहक विमान की क्षमता ट्रकों के काफिले के बराबर नहीं होती। अमेरिका एक घाट का निर्माण कर रहा है जिससे नावें गजा तक भोजन ला सकेंगी, लेकिन वह घाट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। धन्य फादर जेम्स अल्बेरियन द्वारा स्थापित डिवाइन मास्टर के शिष्य धर्म बहनों ने 3 अप्रैल को अपने धर्म समाज की स्थापना की शतवर्ष जयंती और भारत में अपनी उपस्थिति की 70वीं वर्षगांठ मनाई। जयंती समारोह मुंबई के बांद्रा में कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसेस के कर कमलों से संपन्न हुआ। जयंती समारोह जिसमें विश्वासों, संगठनों और विभिन्न धर्म समाजों के सदस्यों ने भाग लिया, प्रभु येसु जो सत्य, मार्ग और जीवन है उनका अनुसरण करते हुए भारत में 70 साल व्यतीत करने के लिए धन्यवाद देने का अवसर था। क्रिस्तिया के दौरान उपदेश में कार्डिनल ग्रेसेस ने पास्का के अनुभव और सुसमाचार प्रचार के बीच बहुत करीबी संबंध को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, सुसमाचार की घोषणा एमाउस के शिष्यों का अनुभव है जब उनकी आंखें खुले और वे यरूशलेम लौटे। हम सभी पास्का के लोग हैं और इसलिए हम एक ही बात कह सकते हैं, क्या हमारा हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहा है और क्या हम पुनर्जीवित ख्रिस्त की खुशी बांटने नहीं दौड़ रहे हैं? कार्डिनल ने कहा कि शतवर्ष जयंती की खुशी मनाना खुद से सवाल करने का अवसर है कि कैसे घोषणा की जाए, खुशी मनाई जाए और यूखरिस्त धर्म विधि एवं पुरोहिताय के मिशन से किस तरह गुरु प्रभु येसु की सेवा की जाए। भारत की कार्तिक धर्म समाजों की 100 से अधिक सुपीरियर धर्म बहनें अपने धर्म समाज का संचालन कैसे करें और भारत में कलीसिया की बेहतर सेवा के तरीके तलाशने के लिए केरल में एकत्रित हुई।
संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार 11 अप्रैल को वाटिकन के कुंचिस्तोरो सभागार में परम धर्म पीठीय बाइबल आयोग के सदस्यों से मुलाकात की जो अपने वार्षिक सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने सहृदय स्वागत करते हुए कहा, मुझे आपके वार्षिक सत्र के अंत में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है जिसमें आपने बाइबल में एक अस्तित्वगत विषय बीमारी और पीड़ा पर गहराई से विचार करने का प्रस्ताव रखा है। यह एक शोध है जो हर इंसान से संबंधित है क्योंकि वे दुर्बलता, नाजुकता और मृत्यु के अधीन हैं। संत पापा ने कहा कि दुख और बीमारी ऐसी प्रतिकूलताएं हैं जिनका सामना किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना मनुष्य के लिए उपयुक्त तरीके से करना महत्वपूर्ण है, अर्थात उन्हें रिश्ते में अनुभव करने में मदद करना और उनके खिलाफ विद्रोह करने की मानवीय प्रवृत्ति को अलगाव, परित्याग और हताशा में बदलने से रोकना। ख्रिस्तीय अनुभव में अक्सर पीड़ा की छलनी नहीं होती। उदाहरण के लिए जब कोई बीमारी का अनुभव करता है तो यह एक व्यक्ति को क्या आवश्यक है और क्या नहीं है को समझने में परिपक्व बना सकता है। संत पापा कहते हैं कि ध्यान में रखने योग्य दो निर्णायक शब्द हैं, करुणा और समावेशन। संत पापा ने कहा कि उदाहरण हमेशा की तरह मसीह से आता है और विशेष रूप से किसी बीमार व्यक्ति या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के करीब रहने के उनके तरीके से। यीशु पीड़ा की व्याख्या नहीं करते बल्कि पीड़ितों की ओर झुकते हैं। वे सामान्य प्रोत्साहन और खाली सांत्वनाओं के साथ दर्द का सामना नहीं करते बल्कि खुद को इससे छूने की अनुमति देते हैं। यीशु की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। यह करुणा से बनी हुई है जो मनुष्य को बचाती है और उसके दर्द को बदल देता है। मसीह ने हमारे दर्द को पूरी तरह से अपना बना लिया। वे कलवारी पहाड़ पर दुनिया की सारी बुराइयों को अपने ऊपर ले लेते हैं जो मानव के प्रति अपनी निकटता का सर्वोच्च उदाहरण है। पीड़ा और बीमारी के अनुभव के माध्यम से हम कलीसिया के रूप में ख्रिस्तीय और मानवीय एकजुटता में सामान्य नाजुकता के नाम पर संवाद और आशा के अवसरों को खोलते हुए सभी के साथ मिलकर चलने के लिए बुलाए गए हैं। उधर पवित्र भूमि के अभिरक्षक फादर इब्राहिम फलतास पवित्र भूमि में ख्रिस्तीय समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं को बतलाते हैं। वाटिकन के फीदे समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में फादर इब्राहिम फलतास ने गाजा में चल रहे युद्ध के आलोक में पवित्र भूमि में ख्रिस्तीय समुदायों के सामने आने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उस स्थिति पर विचार करते हुए जिसमें ख्रिस्तीय समुदाय स्वयं को पाते हैं, फादर फलतास ने गाजा की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बताया कि ख्रिस्तियों के लिए जो पवित्र भूमि में अल्पसंख्यक हैं, इसका सामना करना बहुत ही कठिन त्रासदी बन गई है। दुनिया के सभी बच्चों की तरह ये बच्चे भी इन अत्याचारों के पहले शिकार होते हैं। फादर फलतास ने शांति के लिए संत पापा फ्रांसिस की अनथीन अपील की सराहना की। उन्होंने कहा, संत पापा की अपीलें पवित्र भूमि के ख्रिस्तियों को समर्थन और ताकत देती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।